पृष्ठ संख्या 196, अरब दुनिया। इज़राइल एक प्रमुख घटक के रूप में युद्धोत्तर काल में अरब संसार में संघर्षों का मुख्य कारण संयुक्त राज्य तथा उसके मित्र देशों की अरब राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकने की नीति थी। ऐसा इस क्षेत्र में साम्यवाद के विस्तार और सोवियत प्रभाव के प्रसार को रोकने के लिए किया जा रहा था, जो इस क्षेत्र के तेल संसाधनों पर अपना नियंत्रण कायम रखने के लिए कृत संकल्प थे। इस क्षेत्र में तनाव का दूसरा कारण नया राष्ट्र इजराइल था, जो अमेरिका का प्रमुख मित्र देश भी था। फिलिस्तीन में यहूदियों के आवर्जन और वहां एक यहूदी गृह राष्ट्र की स्थापना के प्रश्न पर ब्रिटेन और अरब राष्ट्रवाद के बीच मतभेद था। नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ फिलिस्तीन को दो अलग राष्ट्रों, एक अरब राष्ट्र और एक यहूदी राष्ट्र के रूप में बांटने के लिए राजी हो गया, लेकिन फिलिस्तीन का विभाजन होने से पहले 14 मई 1948 को ब्रिटेन फिलिस्तीन से हट गया, जो मैंडेट के रूप में उसके शासन के अधीन था। इजराइल ने यहूदी राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी और संयुक्त राज्य ने अपने ही दिन उसे मान्यता दे दी। इजराइल राष्ट्र की स्थापना के बाद अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया, जिसमें अरब लोग पराजित हुए। फिलिस्तीन के अरबों से उनकी जमीनें और घर छीन लिए गए और इनमें से 10 लाख से भी अधिक अरबों को शरणार्थी के रूप में दूसरे अरब देशों में शरण लेनी पड़ी। जॉर्डन को पहले ट्रांस जॉर्डन था, 1946 में एक स्वतंत्र शाही राज्य बन गया। 1949 में उसने जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित फिलिस्तीनी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया, जो वेस्ट बैंक के नाम से लोकप्रिय था। इजराइल ने संयुक्त राज्य की सहायता से अपनी तकनीकी और सैन्य शक्तियों का विकास शुरू कर दिया और वह इस क्षेत्र के सबसे अधिक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। अरब देशों ने इजराइल राष्ट्र को मान्यता देने से इनकार कर दिया और अरब के राष्ट्रवादी इजराइल को अरब राष्ट्रवाद की उभरती शक्ति का दमन करने वाली शक्ति के रूप में देखने लगे। स्वेज नहर की लड़ाई। मिस्र ने 1950 और 1960 के दशकों में गमाल अब्दुल नासिर के नेतृत्व में राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व किया। 1954 में ब्रिटेन को मिस्र से अपनी सेनाएं हटा लेने के लिए कहा गया। इन्हीं दिनों मिस्र ने सोवियत संघ प्राप्त शस्त्र अस्त्रों के बल पर अपनी स्वतंत्र सैन्य शक्ति का विकास करना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य ने नील नदी पर आसवान बांध बनाने के लिए मिस्र को सहायता देने की पेशकश की, लेकिन जब मिस्र को सोवियत संघ से शस्त्रास्त्र प्राप्त होने लगे तो आसवान बांध के लिए अमेरिकी सहायता को रोक दिया गया। 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया और अगले ही दिन स्वेज नहर पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं को वहां उतार दिया गया। मिस्र पर इन तीनों देशों ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के हमले का दुनिया भर में विरोध हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों ने भी इसका विरोध किया। संयुक्त राज्य के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने ही हमले की निंदा की। 5 नवंबर को सोवियत संघ ने आक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी दी कि वे मिस्र से चले जाएं, अन्यथा वह मिस्र की रक्षा के लिए अपने प्रेक्षापास्त्रों का प्रयोग करेगा। 7 नवंबर 1956 को वहां ब्रिटेन और फ्रांस की सैनिक कार्रवाई समाप्त हो गई और उनकी सेनाएं अपने अपने देशों को लौट गई। मिस्र और इसराइल युद्ध विराम पर समर्थन व्यक्त किए। आइजनहावर का सिद्धांत। मिस्र में 1956 की लड़ाई के समाप्ति का अरब राष्ट्रवाद की जीत के रूप में स्वागत किया गया। इससे इस क्षेत्र में सोवियत प्रभाव की भी अभिवृद्धि हुई। अब मिस्र ने आसवान बांध के निर्माण में सहायता प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ का रुख किया। नासिर ने विभिन्न अरब राज्यों को संगठित करके अरब एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया। इन घटनाओं से चिंतित होकर संयुक्त राज्य ने एक सिद्धांत की घोषणा की, जिसे संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के नाम पर आइजनहावर सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त राज्य ने इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद कहे जाने वाले खतरे से बचाने के लिए आर्थिक तथा सैनिक सहायता देने का निश्चय किया, लेकिन जुलाई 1958 में इराक में पश्चिम समर्थक सरकार का तख्ता पलट दिया गया। लेबनान और जॉर्डन में पश्चिम समर्थक सरकारों को गिराने के से बचाने के लिए संयुक्त राज्य और ब्रिटेन की सेनाओं को वहां भेजा गया। संयुक्त राज्य ने इसराइल को शस्त्र सहायता देना जारी रखा। अरब इसराइल युद्ध 1967 में एक लड़ाई छिड़ी जिसमें एक ओर इसराइल और दूसरी ओर मिस्र, जॉर्डन और सीरिया तैनात थे। इसे 6 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध में अरब राज्यों की हार हुई और इसराइल ने सिनाई प्रायद्वीप में मिस्र के इलाकों पर, जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर जॉर्डन प्रदेश तथा गाजा पट्टी और सीरिया प्रदेश के गोलन हाइट्स नामक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसराइल ने पूरे जेरूसलम शहर पर भी अपना कब्जा जमा लिया। 1973 में एक और अरब इसराइल युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान तेल उत्पादक अरब राज्यों ने घोषणा की कि वह इसराइल को समर्थन देने वाले देशों को तेल देना बंद कर देगा। इन देशों में मुख्य रूप से संयुक्त राज्य और उसके नाटो के मित्र देश शामिल थे। नाटो के यूरोपीय सदस्यों ने इसराइल के समर्थन में संयुक्त राज्य का साथ देने से इनकार कर दिया। अंत में स्वयं संयुक्त राज्य को भी इसराइल को युद्ध विराम के लिए तैयार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसराइल ने उन अरब इलाकों को खाली करने से इनकार कर दिया जिन पर उसने 1956, 1967 और 1973 की लड़ाई के दौरान कब्जा कर लिया था। क्यूबा में प्रेक्षापास्त्र संकट। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर दुनिया के इतिहास में क्यूबा में परमाणु प्रेक्षापास्त्रों की स्थापना दुनिया के लिए सबसे गंभीर संकट था। परमाणु अस्त्रों के विकास के साथ साथ उन्हें प्रक्षेपित करने की नई प्रणालियों का भी विकास हो रहा था, जिसमें इन अस्त्रों का परिवहन करने और शत्रु देश के ठिकानों पर गिराने की प्रणालियों का विकास भी शामिल था। इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रेक्षापास्त्रों का विकास किया गया। परमाणु युद्ध अस्त्रों से लैस इन प्रेक्षापास्त्रों या रॉकेटों से हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के किसी भी हिस्से में बिल्कुल सही निशाना लगाया जा सकता था। संयुक्त राज्य के दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने सैनिक अड्डे बनाए थे। सोवियत संघ को लक्ष्य बनाकर वहां अपने प्रेक्षापास्त्र स्थापित कर दिए थे। सोवियत संघ के पास सामान्यतः ऐसे बाहरी सैनिक अड्डे नहीं थे और उनके प्रेक्षापास्त्रों के ठिकाने उसके अपने ही क्षेत्र के भीतर स्थित थे। दोनों पक्षों के पास परमाणु प्रेक्षापास्त्रों से सज्जित पनडुब्बियां भी मौजूद थीं। आरंभ में इन प्रेक्षापास्त्रों की मार कम दूरी यानी कुछ 100 किलोमीटर होती थी, किंतु इनके अड्डे शत्रु देश के निकट बनाना जरूरी था। दूसरे देशों के रहस्यों की जानकारी हासिल करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का भी विकास किया गया था। उदाहरण के लिए ऊंचाई पर बहुत तेजी से उड़ते हुए विमान शत्रु देश के इलाकों की हूबहू तस्वीरें उतार सकते थे और सेना, टैंकों, हवाई अड्डों, उद्योगों के सही सही ठिकानों का पता लगा सकते थे। इन प्रेक्षापास्त्रों का पता लगाया जा सकता था और उनकी तस्वीर भी खींची जा सकती थी। क्यूबा में जनवरी 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में एक क्रांति हुई, जब नई सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में आमूल परिवर्तनवादी उपाय अपनाने शुरू किए। भूमि विषयक सुधार लागू किए गए और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना आरंभ किया, तो संयुक्त राज्य ने उसके प्रति शत्रुता का रुख अपनाना ठीक समझा। इसका एक कारण यह भी था कि नई सरकार ने रूस और चीन के साथ मैत्री संबंध बनाना शुरू कर दिया था। जनवरी 1961 में संयुक्त राज्य ने क्यूबा के साथ अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए और उसके साथ अपने समस्त आर्थिक संबंध भी समाप्त कर दिए। क्यूबा सरकार को अपदस्थ करने के लिए उसने अप्रैल 1961 में 2000 क्यूबाई देश निष्कासितों को पिग्स की खाड़ी के तट पर उतार दिया, लेकिन यह आक्रमण विफल हो गया और उसे 2 दिनों में ही कुचल दिया गया। हालांकि सारी दुनिया में संयुक्त राज्य द्वारा क्यूबा पर आक्रमण करने की कार्रवाई की निंदा की गई थी, पर वह क्यूबा सरकार को अपदस्थ करने का इरादा छोड़ने को तैयार नहीं था। संयुक्त राज्य के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने पिग्स की खाड़ी के आक्रमण की विफलता के बाद खुली घोषणा की कि हम क्यूबा को साम्यवादियों के हाथों में छोड़ने को तैयार नहीं हैं। यह उस खतरे की पृष्ठभूमि थी जो अक्टूबर 1962 में उत्पन्न हुआ। सोवियत संघ अमेरिकी सैनिक अड्डों से घिरा हुआ था, जिनमें से कुछ में परमाणु प्रेक्षापास्त्र भी तैनात थे, लेकिन सोवियत संघ का कोई अड्डा संयुक्त राज्य के प्रदेशों के आसपास नहीं था। अक्टूबर 1962 में संयुक्त राज्य को अपने जासूसी विमानों द्वारा लिए गए चित्रों से यह जानकारी मिली कि सोवियत संघ क्यूबा में, जो संयुक्त राज्य के दक्षिणी छोर से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर से है, प्रेक्षापास्त्र ठिकानों का निर्माण कर रहा था। संयुक्त राज्य ने अब एक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी वे सभी दूसरे देशों की जमीन पर लड़ी गई थी और उसकी अपनी भूमि लड़ाइयों से सर्वथा अछूती रही थी। क्यूबा में प्रेक्षापास्त्रों की तैनाती से संयुक्त राज्य पर आसानी से हमला किया जा सकता था। इसे संयुक्त राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जाने लगा। हालांकि सोवियत संघ ने पहली बार वही किया जो संयुक्त राज्य काफी समय से करता आ रहा था, अर्थात दूसरे देशों से सैनिक अड्डे स्थापित करना। किंतु इससे सोवियत संघ और संयुक्त राज्य के बीच युद्ध का खतरा पैदा हो गया। यह एक ऐसी स्थिति थी जो उनके बीच विभिन्न तनावों और संघर्षों के बावजूद पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। इस युद्ध से संपूर्ण मानवता खतरे में पड़ जाती। 22 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रपति केनेडी ने क्यूबा की नौसैनिक और हवाई नाकेबंदी की घोषणा कर दी, जिसका तात्पर्य था कि संयुक्त राज्य क्यूबा की ओर जाने वाले प्रत्येक विमान या जहाज को रोक लेगा। उसने क्यूबा के प्रेक्षापास्त्र ठिकानों पर हमला करने की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन दुनिया को विनाश के कागार पर लाने वाला यह संकट 26 अक्टूबर को समाप्त हो गया, जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति ख्रुश्चेव ने अमरीकी राष्ट्रपति केनेडी को यह संदेश भेजा कि यदि संयुक्त राज्य क्यूबा पर आक्रमण न करने का वचन दे तो सोवियत संघ वहां से अपने प्रेक्षापास्त्र हटा लेगा। इस बात पर सहमति हुई और यह संकट समाप्त हो गया। संयुक्त राज्य भी सोवियत संघ के निकट तुर्की में लगाए गए अपने प्रेक्षापास्त्र हटाने के लिए राजी हो गया। शीत युद्ध का अंत। पहले उल्लेख किया जा चुका है कि 1990 के दशक में दुनिया शीत युद्धोत्तर काल में प्रवेश कर चुकी थी। 1950 से तनावों को कम करने की अनेक कोशिश की गई थी और कई अवसरों पर ऐसा लगा कि दोनों गुट आपसी वैमनस्य को दूर करने के युग में प्रवेश कर रहे हैं। शांति का वातावरण स्थापित करने में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अनेक घटनाओं के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि तनावों में कमी का दौर शुरू हो गया है, लेकिन उसके बाद नए तनाव और संघर्ष शुरू हो गए। संघर्ष की नीति बदलने में इस अनुभूति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि मानव इतिहास की विगत घटनाओं के विपरीत आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को केवल युद्धों द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता। परमाणु युद्ध के प्रभावों पर वैज्ञानिक रिपोर्टरों और उनके द्वारा शस्त्रीकरण की होड़ तथा सुनिश्चित पारस्परिक विनाश एवं परमाणु भयो उत्पादन के सिद्धांत के खिलाफ उठाई गई आवाज ने तथा विश्व भर में हुए युद्ध विरोधी आंदोलनों ने तनावों में कमी का वातावरण तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने आरंभ से ही निरशस्त्रीकरण पर बल दिया ताकि विश्व में सुलभ विशाल संसाधनों का उपयोग विकास करने तथा दुनिया के दुख दैन्य को मिटाने के लिए किया जा सके। 1960 के दशक के आरंभ से ही कठोर सैनिक गठबंधनों के टूटने के लक्षण प्रकट हो रहे थे। 1956 से सोवियत संघ ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देने लगा था। 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में साम्यवादी आंदोलन में उत्पन्न हुए विभेद के कारण साम्यवाद के विस्तार के खतरे के सिद्धांत का महत्व काफी कम हो गया। सोवियत संघ एवं चीन की शत्रुता ने साम्यवाद के भय को कम कर दिया, जिसे पहले एक के बद्ध शक्ति माना जाता था। 1961 में अल्बानिया वर्षा समझौते से अलग हो गया और रोमानिया सोवियत संघ से स्वतंत्र विदेशी नीति का अनुसरण करने लगा। 1970 के दशक के आरंभिक दौर में चीन के साथ संयुक्त राज्य के संबंध में सुधार आया और 1971 में चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश मिल गया। संयुक्त राज्य की अगुवाई में बने सैनिक गठबंधनों में से बदलाव आए। 1966 में फ्रांस ने नाटो से अपनी सैन्य टुकड़ियां हटा लिया और फ्रांसीसी भूमि से नाटो की सेनाएं और अड्डे हटा दिए गए। 1970 के दशक के आरंभिक वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन भी बिखरने लगा। 1973 में पाकिस्तान और 1974 में फ्रांस उससे अलग हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति की प्रक्रिया बहुत आसान नहीं थी। कई बार विश्व में परमाणु युद्ध का खतरा उत्पन्न हुआ। 1956 में हंगरी में एक विद्रोह हुआ और 1968 में चेकोस्लोवाकिया की सरकार में परिवर्तन हुआ। इन दोनों मामलों का मतलब यह था कि ये देश सोवियत संघ के नियंत्रण से बाहर जा रहे थे और एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक नीतियां अपना रहे थे जो सोवियत समर्थित साम्यवाद से अलग थी। सोवियत संघ की सेनाओं ने इन देशों पर आक्रमण कर दिया। चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण में वर्षा संधि में शामिल कुछ अन्य देशों की सेनाएं भी सोवियत सैनिक के साथ हो गई। वहां एक सोवियत समर्थक सरकार स्थापित कर दी गई। 1961 में पूर्व जर्मनी ने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी ताकि पूर्वी जर्मनी के लोग भागकर पश्चिमी जर्मनी और बर्लिन में ना जा सके। इसका पश्चिमी देशों ने व्यापक विरोध किया। 1979 में सोवियत संघ ने अफगान विद्रोहियों के खिलाफ वहां की सरकार की सहायता के लिए अपने सैनिक अफगानिस्तान भेजे। इन विद्रोहियों को संयुक्त राज्य ने शस्त्र प्रदान किए और ये लोग पाकिस्तान की सहायता से अफगानिस्तान में कार्रवाई कर रहे थे। बहुत से अन्य देशों में और खास तौर से लैटिन अमेरिकी देशों में भी संयुक्त राज्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के कई मामले हुए। संयुक्त राज्य ने अफ्रीका में भी विद्रोहियों को उन सरकारों के खिलाफ सहायता प्रदान कर जिन्हें वह सोवियत संघ और साम्यवाद का समर्थक मानता था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विनाश के साधनों के विनाश से ही शांति स्थापित हो सकती है। ऐसे हथियारों की मौजूदगी जिनकी विनाशकारी शक्ति की कल्पना कर पाना भी साधारण व्यक्ति के लिए कठिन है, स्वयं ही तनाव का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए संघर्ष की समाप्ति के बाद निःशस्त्रीकरण होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले परमाणु निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। यद्यपि आज भी निःशस्त्रीकरण दुर्लभ प्रतीत होता है, तथापि इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं। 1963 में संयुक्त राज्य, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने एक परीक्षण निषेध संधि पत्र ट्रस्ट ब्रेन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जिससे वायुमंडल, अंतरिक्ष तथा जल थल में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी गई। लेकिन फ्रांस, चीन और जर्मनी ने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और उन्हें वायुमंडल में परमाणु परीक्षण करना जारी रखा। 1969 में संयुक्त राज्य और सोवियत संघ के बीच शस्त्रों में कमी करने के लिए वार्ताएं आरंभ हुई और 1972 में कुछ खास वर्गों के प्रेक्षापात्रों की हदबंदी पर समझौता हुआ। ये वार्ताएं युद्ध नीतिक, शस्त्रास्त्र परिसीमा वार्ता, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, सॉल्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1980 वाले दशक में जब संयुक्त राज्य ने युद्ध नीतिक पहल स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव नाम की एक नई अस्त्र प्रणाली नवमंडलीय युद्ध स्टार वारसा पर काम करना शुरू किया तो निरशस्त्रीकरण की वार्ताओं में बाधा पड़ गई। इस कार्यक्रम का लक्ष्य शस्त्रों की स्पर्धा को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ले जाना था, लेकिन कुछ वर्गों के परमाणु प्रेक्षापात्रों को खत्म करने तथा कुछ अन्य प्रेक्षापात्रों की संख्या सीमित करने में थोड़ी बहुत प्रगति हुई। कई देशों ने परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी NPT का भी समर्थन एवं उस पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य उन देशों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने से रोकना है जिनके पास परमाणु अस्त्र समझौता नहीं है। लेकिन जिन देशों के पास पहले से ही परमाणु अस्त्र मौजूद है, उन देशों पर परमाणु अस्त्र समाप्त करने की कोई बाध्यता लागू नहीं होती। इससे कुछ परमाणु संपन्न देशों का परमाणु अस्त्रों पर स्वामित्व प्राप्त हो जाने के कारण भारत सहित कई देश इस संधि को भेदभावपूर्ण मानते हैं। भारत ने 1974 में और हाल ही में 1998 में परमाणु परीक्षण किए। 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही परमाणु परीक्षण किए। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास भी परमाणु शस्त्र मौजूद हैं। उसके पास मौजूद परमाणु शस्त्रों की संख्या 50 होने का अनुमान है। शीत युद्ध की समाप्ति का श्रेय कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं को दिया जा सकता है। 1989 में पूर्वी यूरोप के देशों में सत्ता पर साम्यवादी दलों का एकाधिकार हो गया। इसे मिखाइल गोरबाचेव के नेतृत्व में सत्तारूढ़ नई सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का प्रमुख परिणाम माना जा सकता है, जिसने 1985 में सत्ता ग्रहण की। पूर्वी यूरोप के देशों की सरकारों पर सोवियत नियंत्रण ढीला होने लगा और इन देशों में स्वतंत्र चुनावों के बाद नई सरकारों का गठन हुआ। अक्टूबर 1990 में जर्मनी फिर से एक हो गया। सोवियत संघ के नेतृत्व में गठित वारसा समझौते को 1991 में औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। स्मरणीय है कि नाटो को भंग नहीं किया गया था। वास्तव में इन वर्षों में इसका विस्तार हुआ और इस समय इसके सदस्यों की संख्या 26 है। सोवियत संघ पर 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद से चला आ रहा साम्यवादी दल का एक छत्र शासन 1991 में समाप्त हो गया और इस वर्ष के अंत तक सोवियत संघ 15 स्वतंत्र गणराज्यों में बट गया। सोवियत संघ के टूटने के बाद शीत युद्ध भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। शीत युद्ध का प्रयोग दो सैनिक गुटों के बीच तनातनी और स्पर्धा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिनमें एक गुट में पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश शामिल थे जिनका अगुआ संयुक्त राज्य था, और दूसरे गुट में सोवियत संघ तथा साम्यवादी दलों द्वारा शासित यूरोपीय देश शामिल थे। इसका प्रभाव विश्व के प्रत्येक भाग में हुए संघर्षों पर पड़ा, क्योंकि दुनिया के हर हिस्से में होने वाले लगभग प्रत्येक बड़े झगड़े को इसी तनाव और स्पर्धा संदर्भ में देखा जाता था। शीत युद्ध को अक्सर दो परस्पर विरोधी राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रणालियों अर्थात पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विश्व का पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की स्पर्धा के रूप में देखा जाता था। यह युद्ध इसलिए शीत बना रहा क्योंकि ऐसे अनेकों संघर्ष और तनाव, यहाँ तक कि युद्ध होने के बावजूद, जिसमें दोनों सैनिक गुट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, दोनों के बीच कोई व्यापक आम युद्ध नहीं हुआ, और किसी भी युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे से कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया। शीत युद्ध की समाप्ति का अर्थ है कि दो सैनिक गुटों के बीच तनातनी और संघर्ष समाप्त हो गए, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दुनिया से तनाव, संघर्ष और युद्ध हमेशा के लिए मिट गए। कहा जा सकता है कि इसके बाद विनाशकारी युद्ध का खतरा समाप्त हो गया है। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बन गया और अक्सर उसी रूप में काम करने लगा। अक्सर कहा जाने लगा कि विश्व एक ध्रुवीय हो गया। तथापि विश्व की नवीनतम घटनाओं ने एक ध्रुवीय सिद्धांत को भंग कर दिया। कुछ विशेषज्ञों ने लगभग 1990 तक की अवधि को पहला प्रथम शीत युद्ध कहना और दूसरा शीत युद्ध होने की संभावना व्यक्त करना शुरू कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य की विश्व की सर्वप्रमुख सैनिक और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। दुनिया का प्रत्येक हिस्सा संयुक्त राज्य के हितों के दायरे में आ गया। संयुक्त राज्य स्वयं को विश्व की एक महान नैतिक शक्ति के रूप में भी देखने लगा। बहुत से अमेरिकियों पर विचार था कि जिस काल में वो जी रहे हैं उसे अमेरिकी सदी कहना अधिक उचित होगा। सोवियत संघ के बिखरने के बाद संयुक्त राज्य विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह गया। आर्थिक प्रभुत्व। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कोई क्षति नहीं हुई थी। सच तो यह है कि महामंदी से उत्पन्न समस्याओं का इस युद्ध के दौरान समाधान हो गया। युद्धोत्तर काल अभूतपूर्व समृद्धि का काल था। 1940 से 87 के बीच अमेरिका का सकल घरेलू उत्पादन 100 अरब डॉलर से बढ़कर 5200 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि इस दौरान आबादी 13.2 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ पर पहुंच गई। अमेरिकी लोगों की समृद्धि तथा कथित उपभोग संस्कृति या उपभोगवाद की वृद्धि में प्रतिबिंबित हुई। अनेकों प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मोटर कार इस उपभोग संस्कृति का एक प्रतीक बन गया। हर कोई छोटे बड़े प्रौद्योगिकीय आविष्कार के साथ मौजूद उत्पादन बेकार हो जाते थे या उनका कोई खरीदार नहीं रह जाता था। संयुक्त राज्य इस उपभोगवाद को इसलिए कायम रख पाया क्योंकि उनके पास अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के और साथ ही दुनिया के अन्य हिस्सों के प्राकृतिक संसाधनों पर भी उसका अधिकार था। पिछले दौर के समान अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था के केंद्रीयकरण में भी वृद्धि हुई। अधिकांश अर्थव्यवस्था पर अपेक्षाकृत कम कंपनियों और निगमों का नियंत्रण था। शस्त्र अस्त्रों से संबंधित उद्योगों का अत्यधिक विस्तार हुआ और सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों की खरीद पर खर्च की जाने वाली अतुलनीय राशि से केवल कुछ एक बड़ी कंपनियों ने लाभ कमाया। शांति के दौर में सैन्य तंत्र और उद्योग के बीच बढ़ते हुए आपसी संबंध से अनेक अमेरिकियों में चिंता की लहर दौड़ गई और जनवरी 1961 में संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपना पद त्याग करते समय अमेरिकी जनता को सेना और उद्योग के बढ़ते गठजोड़ द्वारा अनुचित प्रभाव हासिल करने के खिलाफ सजग रहने के लिए आगाह किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले अन्य देशों की तुलना में संयुक्त राज्य में राजनीतिक नेताओं और उच्च स्तर की नौकरशाही एवं सैनिक संस्थापनों और निगमों तथा बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाओं के आपसी संबंध अधिक प्रगाढ़ थे। सरकार ने बहुधा घाटे का सामना करने के लिए निगमों पर लगाए जाने वाले करों में वृद्धि करने की, स्थान पर चिकित्सा सुविधाओं और समाज कल्याण के अन्य कार्यक्रमों में कटौती करने की नीति अपनाई। हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य के आर्थिक प्रभुत्व में कमी आई है। 1948 से लेकर 1952 तक संयुक्त राज्य ने यूरोपीय उद्वार योजना के अधीन पश्चिमी यूरोप को 12 अरब डॉलर की सहायता दी थी, जो अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के नाम से लोकप्रिय हुई। इस योजना ने बहुत कम समय में यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को युद्ध पूर्व स्तर पर लाने में मदद की। अगले वर्षों में यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ। जापान दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। न केवल विश्व बाजार में बल्कि अमेरिकी बाजार में भी जापानी माल अमेरिकी माल से होड़ लेने लगा। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संयुक्त राज्य का आर्थिक प्रभुत्व कम होने लगा था। 1950 में विश्व के औद्योगिक उत्पादन में संयुक्त राज्य का हिस्सा 60% था, जो 1980 में घटकर लगभग 45% रह गया था। पश्चिमी यूरोप और जापान संयुक्त राज्य के प्रमुख आर्थिक प्रतिस्पर्धी बन गए। संयुक्त राज्य की विश्व प्रभुत्व की भावना को पहला आघात तब लगा जब 1957 में सोवियत संघ ने अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में भेजा। इसके 3 साल बाद उसने पहले मनुष्य को अंतरिक्ष में भेज दिया। इन आघातों के बाद संयुक्त राज्य पूरे ओज और उत्साह के साथ उन क्षेत्रों में काम करने में जुट गया जिनमें सोवियत संघ उसे मात दे रहा था। अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों को विपुल संसाधन उपलब्ध कराए गए और 1969 में संयुक्त राज्य ने उस समय बड़ी सफलता हासिल की जब उसके 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखे और चहलकदमी की। साम्यवाद विरोधी जुनून। अमरीकी जीवन कई वर्षों तक शीत युद्ध के प्रभाव से ग्रस्त रहा। संयुक्त राज्य नास्तिकवाद साम्यवाद के भय से पूरी तरह त्रस्त रहने लगा। साम्यवाद विरोधी और आमूल परिवर्तनवाद विरोधी जुनून का परिणाम यह हुआ कि ऐसे प्रत्येक मत को जो शीत युद्ध के संबंध में अमरीकी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं होता था उसे तत्काल अमरीका विरोधी और विनाशकारी करार दे दिया जाता था। ट्रूमैन के राष्ट्रपतित्व काल 1945 से 52 में सरकारी अफसरों की वफादारी की छानबीन कराई गई और हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के हजारों अध्यापकों को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उनके द्वारा दी गई शिक्षा को अमेरिका विरोधी माना जाने लगा। बहुत से सिने लेखकों और चलचित्र निर्माताओं को जेलों में डाल दिया गया और अपने विगत साम्यवादी संबंधों को प्रकट करने से इनकार करने पर अनेक लोगों ने बॉलीवुड में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आमूल परिवर्तनवाद विरोधी जुनून आइजनहावर के राष्ट्रपतित्व काल में कुछ वर्षों तक जारी रहा जो 1952 और 1956 में दो बार राष्ट्रपति चुना गया था। 1953 में जूलियस और इथल रोजनवर्ग को सोवियत संघ को परमाणु रहस्य उपलब्ध कराने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया। यद्यपि सारी दुनिया में इसका विरोध किया गया और इस निर्णय को बदलने का आग्रह किया गया परंतु परमाणु बम के जनक के रूप में लोक प्रसिद्ध जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को जो संयुक्त राज्य की परमाणु बम योजना का प्रधान था सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया गया। उसने हाइड्रोजन बम परियोजना का विरोध किया था और उस पर साम्यवादियों से अपने विगत संबंधों को छिपाने का आरोप लगाया गया था। संयुक्त राज्य में इस साम्यवाद विरोधी अभियान का नेता सीनेटर जोसेफ मैकार्थी था। कहा जाता है कि 1950 से लेकर 1954 तक उसने अनेक निर्दोष लोगों को देशद्रोही करार देकर और विदेश विभाग तथा सेना के खिलाफ देशद्रोहियों को छिपाकर रखने के आरोप लगाकर अमेरिका के सार्वजनिक जीवन को आतंकित कर रखा था। आखिर 1954 में उसका पतन हुआ और संयुक्त राज्य के साम्यवाद से भय में थोड़ी कमी आई। हालांकि इस भय के कारण जिन लोगों को परेशान किया गया था उनमें से अधिकांश अपनी मान प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त नहीं कर सके। विदेशों में हस्तक्षेप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लंबे समय तक संयुक्त राज्य की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य साम्यवाद का परिसीमन बना रहा। लैटिन अमेरिका में अमेरिका की नीति कमोवेश पुराने ढरे पर चलती रही जिन लैटिन अमेरिकी देशों की सरकारों के बारे में वामपंथी होने और इसी कारणवश संयुक्त राज्य का विरोधी होने का संदेश होता था वह उन देशों की सरकार गिराने के लिए अपने सैनिक भेज देता था अथवा उन सरकारों के खिलाफ विद्रोहियों को सक्रिय सहयोग देता था। 1960 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद जॉन एफ कैनेडी ने संयुक्त राज्य की घरेलू नीति में एक नई गतिशीलता का सूत्रपात किया लेकिन उसी के राष्ट्रपतित्व काल में संयुक्त राज्य प्रत्यक्ष रूप से वियतनाम युद्ध में उलझने लगा। पिग्स की खाड़ी में घोर विफलता का सामना करना पड़ा और क्यूबा में सोवियत प्रेक्षापास्त्रों को लेकर तनातनी की स्थिति पैदा हुई। 1963 में शांति स्थापना की दिशा में उस समय एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जब संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति कैनेडी और सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने वायुमंडल अंतरिक्ष तथा जलथल में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। 22 नवंबर 1963 को राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या कर दी गई। जिस व्यक्ति को उसका अकेला हत्यारा माना जा रहा था उसे किसी ने पुलिस हिरासत में ही मार डाला। करोड़ों लोगों ने इस हत्याकांड को अपने टेलीविजन पर प्रत्यक्ष रूप से घटते हुए देखा। बाद में न्यायिक आयोग के इस फैसले पर कई क्षेत्रों में संदेह व्यक्त किया गया कि राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या करने में एक ही व्यक्ति का हाथ था। वियतनाम युद्ध में संयुक्त राज्य को अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा। यह लड़ाई उन दिनों अधिक फैल रही थी जब अमेरिका का राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन 1963 से 1969 था। रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रपतित्व काल 1969 से 1974 में उसमें और अधिक तेजी आई। कंबोडिया पर बम गिराए गए और कंबोडिया सरकार को अपदस्थ करके एक जनरल के अधीन वहां एक अमेरिकी समर्थक सरकार स्थापित कर दी गई। संयुक्त राज्य ने इस युद्ध को लाओस तक भी फैला दिया, जो हिंद चीन इंडो चाइना का तीसरा देश था। राष्ट्रपति निक्सन ने चीन के साथ संबंध सुधारने की प्रक्रिया शुरू की और चीन को 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ में दाखिल कर लिया गया। 1972 में निक्सन चीन गया, सोवियत संघ के साथ साल्ट वार्ता शुरू हो गई, जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। 1973 में संयुक्त राज्य वियतनाम की लड़ाई खत्म करने और वहां से अपनी सेनाएं हटा लेने के लिए राजी हो गया, किंतु लड़ाई 2 साल और चलती रही। आखिर यह लड़ाई अप्रैल 1975 में समाप्त हुई, जब संयुक्त राज्य के बचे खुचे विमान और हेलीकॉप्टर सायगॉन नगर से चले गए। उसके बाद जब उत्तर वियतनामी सेना और दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की सेना ने दक्षिण वियतनाम की अमेरिका समर्थक सरकार की राजधानी सायगॉन में प्रवेश किया, वियतनाम का युद्ध राष्ट्रपति निक्सन द्वारा त्यागपत्र देने के बाद ही समाप्त हुआ। वाटरगेट कांड नाम से प्रसिद्ध बदनामी भरे कांड के बाद निक्सन को 1972 में दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था, लेकिन उसके शीघ्र बाद उस पर भ्रष्टाचार तथा डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यालय में जासूसी संयंत्र लगवाने और वहां से चोरी कराने के गंभीर आरोप लगाए गए। यद्यपि उसका दावा था कि उसने कोई कुटिलता नहीं की थी, लेकिन उसके सिर पर महाभियोग का खतरा मंडराने लगा और उसने अपना त्यागपत्र दे दिया। इस दौर में संयुक्त राज्य ने कई अलोकप्रिय सरकारों को समर्थन दिया, जिससे उसे कभी कभी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा और कई ऐसे काम भी करने पड़े जो संयुक्त राज्य के कानून के अंतर्गत अवैध थे। संयुक्त राज्य फिलीपाइंस में फर्डिनंड मार्कोस और हेटी में या क्लाद दुवालियर, जो पापा डॉग के नाम से जाना जाता था, के शासनों को लंबे समय से समर्थन देता आ रहा था, लेकिन ये शासन इतने बदनाम हो गए थे कि संयुक्त राज्य को इन तानाशाहों की सरकार गिराने का समर्थन करना पड़ा। ईरान के मामले में संयुक्त राज्य ने पहले तो एक दुस्साहस भरा कदम उठाया, लेकिन उसके विफल हो जाने पर उसके अधिकारियों ने ईरान के साथ एक ऐसे समझौते किए जो स्वयं उसके कानून के अधीन अवैध थे। ईरान का शाह एशिया में संयुक्त राज्य का सबसे बड़ा समर्थक था, लेकिन 1979 में ईरान में क्रांति हो गई और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। ईरान ने संयुक्त राज्य से मांग की कि वह शाह को उसके सुपुर्द कर दे, जो इलाज कराने अमेरिका चला गया था। ईरान उस पर मुकदमा चलाना चाहता था। अमेरिका के इनकार करने पर ईरानियों ने बहुत से अमरीकियों को बंधक बना लिया। अप्रैल 1980 में जिमी कार्टर ने, जो 1977 में अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, बंधकों को मुक्त कराने के लिए कमांडो भेजे, लेकिन कमांडो कार्यवाही बिल्कुल नाकामयाब रही। आखिर 1981 में जब संयुक्त राज्य ने अमेरिकी बैंकों में रोक कर रखी गई ईरानी संपत्ति को मुक्त किया, तो ईरान ने अमेरिकी बंधकों को मुक्त किया। 1980 के दशक में रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपतित्व काल 1981 से 88 में एक बड़े कांड का भंडाफोड़ हुआ। संयुक्त राज्य के कुछ उच्चाधिकारियों ने निकारागुआ की सरकार के विरुद्ध विद्रोहियों को समर्थन देने के लिए ईरान के साथ एक गुप्त सौदेबाजी की। विश्वास किया जाता था कि उन्होंने यह गैर कानूनी सौदा राष्ट्रपति की सहमति से किया था। 1989 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपतित्व काल 1989 से 92 में संयुक्त राज्य ने अपनी सेनाएं पनामा भेजी। पनामा के शासक जनरल नोरेगा को पदच्युत करके संयुक्त राज्य लाया गया और उस पर नशीले पदार्थों के व्यापार के आरोप में मुकदमा चलाया गया। 1991 में जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, तब संयुक्त राज्य ने कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। संयुक्त राज्य द्वारा प्राधिकृत इस सैनिक कार्रवाई के कारण इराक को कुवैत से हटना पड़ा। गरीबी, संयुक्त राज्य में एक के बाद एक प्रशासन को लगातार अमेरिका में व्याप्त गरीबी के मसले से निपटना पड़ा। दुनिया के इस सबसे अमीर देश में 1980 के दशक में लगभग 15% आबादी, 3 करोड़ लोगों को सरकारी तौर पर गरीबों की श्रेणी में रखा गया था। अलग अलग नस्ली समूहों में गरीबी की स्थिति देखने से पता चलता है कि अमरीकी समाज में आज भी नस्ली असमानता कायम है। 1980 के दशक में अमेरिका में लगभग 33% अफ्रीकी अमरीकी, लगभग 20% हिस्पेनिक अर्थात स्पेनिश भाषा भाषी तथा मैक्सिको, प्यूतो रिको इत्यादि से अमेरिका में आकर बसे लोग और लगभग 12% गोरे गरीबों की श्रेणी में शामिल थे। शहरी क्षेत्रों में बेघर बार लोगों की समस्या भी प्रमुख है। नागरिक अधिकार आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग चौथाई सदी तक संयुक्त राज्य में नस्ली समानता के प्रश्न को लेकर उथल पुथल मची रही। लगातार यह मसला एक बड़ी समस्या बना रहा। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व अफ्रीकी अमरीकी लोगों के दमन और उनके द्वारा समान अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए आंदोलनों के बारे में बताया जा चुका है। 1950 के दशक में एक जबरदस्त नागरिक आंदोलन छिड़ा जिसे आगे के 2 दशकों में महत्वपूर्ण सफलता मिली। इस आंदोलन के मुख्य अफ्रीकी अमरीकी लोगों के पृथक्करण तथा उनके प्रति भेदभाव का अंत, मताधिकार प्राप्त करना और इनकी गरीबी दूर करना इत्यादि थे। संयुक्त राज्य के दक्षिणी राज्यों में काले गोरे के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय, बसें, ट्रेनें, कैफे और होटल, थिएटर तथा अन्य सार्वजनिक स्थान अलग अलग थे। काले लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अनुमति नहीं थी। 1896 में सर्वोच्च न्यायालय में पृथक्करण को कानूनी वैधता प्रदान कर दी गई और पृथक किंतु समान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। 1954 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और कहा, हमारा निष्कर्ष है कि शिक्षा के क्षेत्र में पृथक किंतु समान के सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं है। पृथक शैक्षिक सुविधाएं अपने सहज रूप में असमानता दर्शाती है। इसके फलस्वरूप काले लोगों के बच्चों को उन स्कूलों में दाखिला दिलाने की कोशिश की जाने लगी जो अब तक गोरे के लिए सुरक्षित थे। कुछ राज्यों के गवर्नरों ने इन कोशिशों को जबरदस्ती नाकाम करने का प्रयास किया। आरकनसास के लिटिल रॉक नामक शहर में 1957 में 17 काले बच्चों को एक स्कूल में दाखिले के लिए चुना गया। राज्य के गवर्नर ने काले बच्चों को उस स्कूल में प्रवेश पाने से रोकने के लिए स्कूल के बाहर गार्ड तैनात करवा दिए। इस पर गवर्नर तथा उस राज्य के गार्डों द्वारा कानून का उल्लंघन करने से रोकने के लिए संघ सरकार ने लिटिल रॉक स्कूल में 1,000 छाताधारी सैनिक उतार दिए। ये छाताधारी सैनिक पूरे सत्र के दौरान स्कूल में नियुक्त रहे। ऐसी ही एक और घटना 1962 में एक काली छात्रा को मिसिसिपी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर भी घटी। मार्टिन लूथर किंग नागरिक अधिकार आंदोलन का सबसे प्रभावशाली नेता था। महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित किंग ने अफ्रीकी अमेरिकियों के पृथक्करण के खिलाफ अहिंसक विरोध आरंभ किया। विरोध की शुरुआत अलवामा राज्य में मॉन्टगोमरी नामक स्थान में काले लोगों द्वारा बसों का बहिष्कार करने से हुई। बस कंपनियों को हार माननी पड़ी और उन्होंने बसों में पृथक्करण समाप्त कर दिया। धीरे धीरे आंदोलन दूसरे इलाकों में भी फैलने लगा और उसने अनेक नए रूप ले लिए। उदाहरण के लिए लोग रेस्तराओं में धरना देने लगे। वे पृथक किए गए रेस्तराओं में जाकर खाने पीने की चीजें मंगवाते थे और इनकार करने पर वहीं जमकर बैठ जाते थे। इस आंदोलन में विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नस्ली पृथक्करण और भेदभाव के खिलाफ अहिंसक तरीके से विरोध जताने के लिए झुंड के झुंड विद्यार्थी, जिनमें काले गोरे दोनों शामिल होते थे, मुक्ति यात्रा फ्रीडम राइड पर निकल जाते थे। मतदाता सूची में काले लोगों का नाम दर्ज कराने के लिए भी जबरदस्त आंदोलन चलाया गया। इन आंदोलनों में भाग लेने वाले को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें पुलिस और गोरे उपद्रवियों द्वारा मारा पीटा और गिरफ्तार कर लिया गया। अनेक उपद्रवियों को मार दिया गया। इन स्वतंत्रता सेनानियों का लक्ष्य गान प्रसिद्ध गीत वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब था। 1963 में वाशिंगटन में लिंकन स्मारक के निकट एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। इसी जनसभा के सामने मार्टिन लूथर किंग ने मैंने एक सपना देखा है के नाम से प्रसिद्ध एक ओजस्वी भाषण दिया। अगले वर्षों में नागरिक अधिकारों से संबंधित अनेक विधान बनाए गए, जिसने कानूनी अधिकार के रूप में नागरिक अधिकारों की स्थापना में मदद की। तथापि वैधानिक अधिकार अपने आप में अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो रहे थे और नागरिक अधिकार आंदोलन उत्तरोत्तर आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन का रूप लेता जा रहा था। नागरिक अधिकारों से जुड़े अनेक नेता सक्रिय रूप से युद्ध विरोधी आंदोलन में शामिल हो गए। काले लोगों का एक उग्रवादी आंदोलन भी जोर पकड़ने लगा था, जिसे ब्लैक पावर कहा जाता था। 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई। इस हत्या से संयुक्त राज्य के कई नगरों में नस्ली दंगे भड़क उठे। मार्टिन लूथर किंग को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए मरणोपरांत जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमरीकी इंडियनों, जिनकी संख्या लगभग 20 लाख थी, और हिस्पेनिक लोगों, जिनकी संख्या लगभग 2.2 करोड़ थी, के बीच भी ऐसे ही आंदोलन उठ खड़े हुए थे। युद्ध विरोधी आंदोलन संयुक्त राज्य में 1960 के दशक में विशेष रूप से नौजवानों और बुद्धिजीवियों के बीच नए आमूल परिवर्तनवादी समूह उभरने लगे। उनके उदय का एक बहुत बड़ा कारण वियतनाम युद्ध था, जिससे एक शक्तिशाली युद्ध विरोधी आंदोलन खड़ा हो गया था। विश्वविद्यालयों में युद्ध विरोधी प्रदर्शन हुए। हजारों छात्रों ने सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया। बहुत से युवक भागकर कनाडा और अन्य देशों में चले गए। विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसा की अनेक घटनाएं हुई और प्रदर्शनों को दबाने के लिए पुलिस ने अनेक स्थानों पर हिंसा और क्रूरता का प्रयोग किया। केंट के राज्य विश्वविद्यालय में पुलिस ने 4 विद्यार्थियों को मार डाला। बाद में यह आमूल परिवर्तनवादी समूह शांति, निरस्त्रीकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे अंतर्राष्ट्रीय मसलों से जुड़ गए।